नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के शुरू किए गए अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के पंजप्पुर में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो नियमित एक्सप्रेस और एक यात्री रेलगाड़ी सहित 5 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक विकसित तमिलनाडु बनाना है, इससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा।
दिस प्रोजेक्ट आर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन एनर्जी, पेट्रोलियम रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे, रेलवे एंड रूरल रोड। दे विल बूस्ट एनर्जी एक्सेस कनेक्टिविटी एंड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब फॉर द यूथ ऑफ तमिलनाडु।
राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। कल लोकसभा में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। ये आयोजन नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारत में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है। नई दिल्ली में कल शाम पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुश्री सुजाता शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड बीपीसीएल ने नागरिकों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार एलपीजी आयात को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीपीसीएल ने कहा है कि मौजूदा भू राजनैतिक स्थिति और एलपीजी आयात को प्रभावित करने वाली नाकाबंदी के चलते एलपीजी आयात प्रभावित हुआ है। ऐसे में उपलब्ध आपूर्ति को नियंत्रित तरीके से वितरित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि वहां फंसे 500 से अधिक भारतीय कतर एयरवेज की उड़ानों से नई दिल्ली और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने बताया कि कतर एयरवेज आज भारत के लिए 2 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें एक नई दिल्ली और एक मुंबई के लिए होगी। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर भी हमले की कोशिश की है। अबूधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबूधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी, जिस पर फौरन काबू पा लिया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें कब्जे में लिया। उनका दावा है कि जहाजों ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से खाड़ी देशों पर हमलों को फौरन रोकने की मांग की है। परिषद का कहना है कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया है। नवनीत कौर ने भारत की ओर से 3 गोल किए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।